الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم تسہیل بہشتی زیور میں سے کتاب السلوک والاحسان پڑھتے ہیں. تسہیل بہشتی زیور دراصل حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بہشتی زیور کا ایک یعنی جدید سمجھ لیں ورژن ہے، جدید اڈاپٹڈ ورژن، کہ جس کے اندر کے ایک مدرسہ کراچی میں جامع رشید کے نام سے، تو اس کے اساتذہ کرام نے اس کے اندر جو ہے وہ نئے جدید دور کے جو مسائل ہیں ان کو شامل کیا ہے، اور کچھ جو پرانے زمانے کی مشکل اردو تھی اس کو تھوڑا سا آسان کر کے لکھ دیا ہے. تو اس وجہ سے اس کا نام پھر انہوں نے تسہیل بہشتی زیور یعنی آسان شدہ بہشتی زیور رکھا. تو جو یہ مضمون ہے کتاب السلوک والاحسان، اس کے اندر حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں پہلے تو اخلاق ذمیمہ کے بارے میں بتایا کہ کیا کیا برے اخلاق انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ان برے اخلاق کو دور کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں بن سکتا، انسانوں کے ساتھ بھی اچھا تعلق نہیں بن سکتا. تو اخلاق ذمیمہ بیان کرنے کے بعد پھر حضرت نے اخلاق حمیدہ اور ان کے حصول کے طریقے بیان فرمائے، گویا کہ پوری کی پوری کھیر بنا کر کے ہمارے سامنے رکھ دی کہ یہ ایسے ہوتا ہے، یہ اس سے کھیر خراب ہو جاتی ہے، ایسے کھیر اچھی بنتی ہے، اور اس کو بنانے کا یہ طریقہ ہے. سب کچھ پورا کا پورا یعنی ریسیپی ہمارے سامنے رکھ دی، اور اس کے بعد پھر ہمیں بس کھانے کے لیے پیش کر دیا کہ بس اب تم اس کو کھاؤ، یعنی اس کے اوپر عمل کرو تو تمہاری زندگی جو ہے نا وہ سنور جائے گی. آخر میں حضرت نے اس موضوع میں یہ بتایا کہ جو اخلاق ذمیمہ ہیں یہ ہمارے اندر پیدا ہونے کی کیا وجہ بنتی ہے، کیا سبب بنتی ہیں. تو وہ سبب جو ہے وہ سب سے پہلے تو فرمایا کہ انسان کا اپنا نفس جو ہے نا وہ سبب بنتا ہے، اور نفس جو ہے اگر وہ انسان کے اوپر غالب ہو، حاوی ہو، تو وہ انسان کو برائی کے راستے کے اوپر لگاتا رہتا ہے، شیطان سے گائیڈنس لیتا رہتا ہے. شیطان جو ہے وہ ایسے نفس کو یعنی بہت ہی آسانی کے ساتھ برائی کے اوپر مائل کرتا رہتا ہے. تو یہ نفس نفس امارہ جس کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ہے، اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، ٹھیک ہے، کہ بے شک جو نفس ہے نا یہ تو برائی کی طرف ہی بلانے والا ہے. تو یہ جو نفس ہوتا ہے یہ انسان کی برائی کا سبب بنتا ہے. تو اس کو کیسے قابو کرنا چاہیے، اس سے کیسے جو ہے نا وہ یعنی اس کی برائی سے کیسے بچنا چاہیے، یہ ہم نے پڑھ لیا اس کے اندر اپنے نفس سے بچنے کا طریقہ. پھر اس کے بعد جو دوسری وجہ بنتی ہے انسان کی برائیوں میں مبتلا ہونے کی، وہ دوسرے انسان ہوتے ہیں جن کے ساتھ جو زندگی گزاری جا رہی ہوتی ہے. تو ان انسانوں کے بارے میں پھر حضرت ہے نا بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں یعنی یا جس تو کہے گا سنہری نصائح، گولڈن ایڈوائزز، بہت ہی زبردست گولڈن ایڈوائزز جو ہیں وہ حضرت نے ہمیں دی ہیں. تو ہم وہی پڑھ رہے تھے پچھلی کلاس میں پیج نمبر 147 کے اوپر، عام لوگوں کے ساتھ معاملہ یہ عنوان تھا. تو اس میں حضرت نے فرمایا تھا کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، یہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ دوستی اور رشتہ داری کا تعلق ہوتا ہے، دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ صرف جان پہچان کا تعلق ہوتا ہے، اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جن سے جان پہچان بھی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، तो तीनों के साथ जो है ना, वो हमारा बर्ताव मुख्तलिफ होना चाहिए। इसके साथ अलग तरीका है बर्ताव करने का, इस कैटेगरी के साथ अलग तरीका है बर्ताव करने का, और तीसरी कैटेगरी के साथ अलग है। तो उसमें हजरत ने लिखा था कि जिनसे जान पहचान भी नहीं है, अगर उनके साथ मेल जोल रखना पड़े, यानी मुलाकात वगैरह करनी पड़े, उनके बारे में आप जानते नहीं है। पिछली क्लास में आप लोगों से पूछा भी था, काफी लोगों ने जवाब भी दिए थे कि जानने पहचानने का मतलब क्या होता है, कि आप उनके सिर्फ नाम से वाकिफ ना हो, बल्कि आप उनके किरदार से वाकिफ हो, आप उनके घर बार से वाकिफ हो, ठीक है, आप उसके खानदान से वाकिफ हो, ये होता है जान पहचान। ठीक है, सिर्फ जो है ना, वो दफ्तर के अंदर या किसी स्कूल के अंदर बस उनसे मुलाकात हो गई, या किसी क्या कहते हैं डॉक्टर के क्लिनिक में जा रहे थे, तो वहां पर जो वेटिंग एरिया होता है वहां पर जो है वो चूंकि साथ बैठे हुए थे, डॉक्टर के बुलाने का इंतजार कर रही थी, तो वहां पर बैठ करके बातचीत शुरू कर दी। तो भाई ये है कि आप उनको बिल्कुल भी जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, बस उनके साथ जो है वो थोड़ा बहुत मेल जोल रखना पड़ रहा है। तो उसमें फिर किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ना, तो वो हजरत ने हमें बता दी कि वो जो इधर उधर की बातें और खबरें बयान करें, उनकी तरफ कान मत लगाओ, ठीक है, यानी उनको संजीदगी से मत लो, उनके ऊपर फौरन से भरोसा मत कर लो, एतबार मत कर लो, और फिर उनसे, और फरमाए कि उनसे बहुत ज्यादा मत मिलो, उनसे कोई उम्मीद और इल्तिजा मत करो, ठीक है ना। वहीं पे बैठ करके जो है वो उम्मीदें लगानी शुरू कर दी, इल्तिजाएं करनी शुरू कर दी कि देखें आप मेरा वो वाला काम कर दीजिएगा, आप मुझे ऐसे राइट, अगर कोई उन उनमें खिलाफ शरा बात देखो, तो अगर ये उम्मीद हो कि नसीहत मान लेंगे, तो नरमी से उनको समझा दो, ठीक है ना। यानी ये वाला काम जो है ना, तुम इन लोगों से जिनके साथ तुम्हारी जान पहचान नहीं है, अगर तुम्हें जाहिरी तौर पर वो कोई बुरा काम करता हुआ देख नजर आ रहे हैं, तो दावत और तबलीग का फरीजा जो है ना, तुम यहां पर भी अंजाम दे दो, लेकिन ये देख लेना पहले कि नसीहत मानने की उम्मीद भी है कि नहीं है, ठीक है ना। यानी ऐसा शख्स है जो कि तमीज तरीके के साथ आपके साथ बैठा हुआ है, बात कर रहा है, तो वो अगर आप उसको नसीहत करेंगे तो वो मान लेगा, तो फिर उनको नरमी से समझा दो, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आप जो है वो डॉक्टर्स क्लिनिक के अंदर बैठी इंतजार कर रही हैं, तो एक आंटी आकर के आपके बराबर में बैठ गई, और उनके जो बच्चे हैं ना, वो अजीब धमा चौकड़ी मचाए हुए हैं, उनके बच्चे जो है वो दूसरों को तंग कर रहे हैं, दूसरी आंटियों की चीजें उठा रहे हैं, और जो है वो पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। तो अगर आपको नजर आता है कि ये खातून जो हैं, इनको अगर आप इनके बच्चों के बारे में कुछ बात कह देंगे ना, तो ये एक हंगामा नहीं खड़ा कर देंगी, ठीक है, पुलिस को नहीं बुला लेंगी, या गार्ड को नहीं बुला लेंगी, या उल्टा सीधा जो है वो शोर मचाना नहीं शुरू कर देंगी, तो आप उनको समझा दें कि जरा अपने बच्चों को आप बिठाने की कोशिश करें, जरा उनको मना कर दें कि दूसरों को तंग ना करें, ठीक है। तो इस तरह की जो है ना नसीहत जो है वो ऐसे शख्स को आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई उनकी यानी खानदानी अहवाल का जानना पहले, कि भाई पहले इनके खानदानी अहवाल जानूंगी, फिर उसके बाद मैं उनको बच्चों को संभालने के लिए नसीहत करूंगी, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। उम्मीद है कि इस मिसाल से ये वाले मसला समझ में आ गया होगा। और फिर उसके बाद ये कि ऐसे लोग जो कि जान पहचान वाले नहीं होते हैं, ये आज के दौर के अंदर ना हमारा हम सबका जो एक वास्ता पड़ता है ऐसे लोगों से, वो खास तौर पर मीडिया में जा करके पड़ता है। जब हम मीडिया देखते हैं, या हम कोई मीडिया की कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं, या टेलीविजन के ऊपर कोई चीज़ देख रहे होते हैं, या इवन सोशल मीडिया के ऊपर जिन लोगों से हमारा इंटरेक्शन हो जाता है, फेसबुक के ऊपर या ट्विटर के ऊपर और दूसरे बंदा जाने कितने कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो आपके जान पहचान वाले लोग नहीं होते हैं ना, ठीक है। तो उनकी बातों को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए, बहुत यानी एतमाद नहीं करके बैठ जाना चाहिए कि वो किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं, किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं, तो आपने उसको मानना शुरू कर दिया। खुसूसन जो इवन जो 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 दीन के नाम के ऊपर जिन्होंने अपने चैनल्स बनाए हुए हैं, वो दीनी डिस्कशन कर रहे हो करके, उनको प्लीज म्यूट कर दीजिएगा जो अनम्यूट हुई हुई है, तो वो कोई दीनी मौजू के ऊपर टॉक कर रहे होते हैं, या इवन मुल्क के हालात के ऊपर कुछ जो है वो बयान दे रहे होते हैं, और हम हमें अगर कोई बात उसके अंदर जो है ना अपनी मनपसंद की लगती है तो हम एकदम से उसको जो है ना वो ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं और हम फौरन उसको आगे फॉरवर्ड भी करना शुरू करें। देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, देखो कितनी सही बात कह रहे हैं। ठीक है, इतना आसान है इस दौर के अंदर मीडिया के ऊपर वायरल हो जाना या मीडिया के ऊपर जो है ना वो मकबूल हो जाना, है ना। बिल्कुल कहीं से कोई कुछ पता नहीं होता, एक बंदा ना बंदे ने आकर के जो है वो अपनी YouTube वीडियोस बना दी और अपना एक चैनल बना दिया और दो चार जो है ना वो उसने बड़ी दिल को लुभाने वाली बातें कर दी और बस लोगों ने उसको फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया। एक दो दिन के अंदर जो है ना वो बंदा दुनिया के अंदर मकबूल हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या तरीका है? ये तो बिल्कुल भी हमारे दीन के अंदर ये जायज नहीं है ना। क्या आपने कैसे ऐसे शख्स को जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, है ना भाई, आपको किसी ने उसकी जाती जिंदगी के बारे में कुछ बताया हो, ठीक है ना, किसी का वास्ता उनके साथ पड़ा हो, किसी को फायदा हुआ हो, किसी ने उनसे जो है वो अच्छी बातें सीखी हो, बुराई से जो है वो बचना सीखा हो, नेकी करना सीखा हो, उनके सच के बारे में आपको कुछ पता हो, अमानत के बारे में पता हो, दयानत के बारे में कुछ पता हो, सदाकत के बारे में कुछ पता हो, ठीक है, तो फिर जो है वो आप उनकी बात सुने भी और जो है वो आगे भी बढ़ाएं। ठीक है, तो ये तो वर्ड ऑफ यानी ये तो जाती इंटरेक्शन के जरिए से पता चलता है ना, वर्ड ऑफ माउथ के जरिए से पता चलता है ना। ठीक है, किसी के बारे में उसकी जाती जिंदगी के बारे में पता चलता है आपको, लेकिन YouTube के ऊपर कोई वीडियो आपके पास आती है, ठीक है, जिसकी कि सिर्फ जो वीडियो के अंदर जो वो बात कर रहा है वो बस आपको अच्छी लग रही है और तो कोई चीज आपको इसके अंदर उसके बारे में पता ही नहीं है, तो भाई आप क्यों उसको, कैसे आप उसको फॉरवर्ड कर सकती हैं आगे, कैसे आप उसको जो है ना वो ट्रस्ट कर सकती हैं, कैसे आप लोगों को दूसरे लोगों को जो है वो उसकी तरफ माइल करने का सबब बन सकती हैं, कैसे ये पॉसिबल है, क्यों क्यों ये कर रहे हैं ये वाला काम। ठीक है ना, अब आपको क्या पता कि वो शख्स जो है वो हकीकत में कौन है या वो खातून हकीकत में कौन है और कल को उन्होंने क्या पल पर पुर्जे निकालने हैं, आपको क्या पता है उसके बारे में, कल को जो है वो गुमराही के रास्ते के ऊपर चल पड़ी या पहले से ही चली हुई होंगी, आपको क्या पता, अभी तो अच्छी बातें कर रही है या अच्छी अभी अच्छी बातें कर रहा है, आपको क्या पता कि पीछे उसकी क्या हकीकत है। तो आपने अगर किसी को उसके साथ जो है वो यानी जोड़ दिया या उसके किसी के दिल के अंदर उसकी उसके लिए जगह पैदा हो गई और फिर वो गुमराही के रास्ते के ऊपर जब दूसरों को डालेगा तो आप भी रिस्पॉन्सिबल होंगी फिर इसकी, है ना, उसकी हर बंदे की गुमराही का फिर आपके ऊपर भी बवाल आएगा कि क्योंकि आपने जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है ना, और बवाल क्यों आएगा, क्योंकि आपने कोई तहकीक नहीं करी उसके बारे में, कुछ नहीं पता आपको उसके बारे में और आपने जो है वो उसको फॉरवर्ड कर दिया, लोगों को उनके दरमियान उसको मकबूल बना दिया। ठीक है, ये तरीका हरगिज हरगिज जायज नहीं है हमारे दीन के अंदर। ठीक है भाई, बंदे के बारे में कुछ तहकीक होनी चाहिए किसी, और वो तहकीक कैसे होती है, आप किसी के घर के अंदर घुस के तहकीक नहीं करते, राइट, किसी के घर में घुस करके तो नहीं तहकीक करते कि अच्छा इसके कितने ये हैं और ये किसके साथ क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, इसकी हुदूद अरबा क्या है, इसके खानदान क्या है, इसका माजी कैसा था और ये क्या है। भाई आप जानने वालों के थ्रू किसी के बारे में जानते हैं, जिनके ऊपर आपको एतमाद है, जिनको आप पहले से जानते हैं, उन्होंने उस शख्स के साथ जो है वो वक्त गुजारा होता है, तो उसकी बात जो है वो आप फिर यानी उनके ऊपर फिर आप ट्रस्ट कर रहे होते हैं, इससे ज्यादा तो आप कर भी नहीं सकते, लेकिन हम आज के दौर के अंदर इतना भी नहीं करते, बात समझ आ रही, हम आज के दौर में इतना भी नहीं करते, ठीक है ना, तो इसका हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। दूसरी बात यह है, अच्छा यहां पर एक बात या जिस जरा क्लियर कर दे, अगर किसी के जहन में ये सवाल नहीं भी आ रहा ना फिर भी हम इस सवाल का यानी जवाब देंगे, ठीक है, आना तो चाहिए आपके जहन में ये सवाल, ठीक है, अगर आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, बल्कि पूछना चाहिए था, ठीक है, अगर आ रहा है जहन के अंदर ये सवाल तो आपको पूछना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आ रहा ना हम फिर भी जवाब देंगे इसका, ठीक है, मतलब समझ आ रही, उसका जवाब ये है कि इस वाली क्लास के अंदर एक तो मैं हो गया, सही है, और बाकी ऊपर जो पार्टिसिपेंट्स की तादाद लिखी हुई है वो लिखी हुई है 51, तो 51 में से एक इस फकीर को माइनस करके कितनी बचती हैं, 50 खवातीन बचती हैं, ठीक है ना, तो 50 खवातीन जो हैं वो यहां पर क्या कर रही हैं, क्या आप मुझे जाती तौर पर जानती हैं, क्या आप मेरे घर के अंदर, आपने आकर के देखा है कि घर के अंदर क्या हालात हैं? क्या आप मेरी माजी के बारे में जानती हैं? राइट, क्या आप मेरे खानदान के बारे में जानती हैं? कितनी खवातीन हैं आप ऐसे जो कि नहीं जानती हैं, ठीक है? लेकिन वो यहाँ क्या कर रही है, आपको क्या पता? क्या आपको जो है वो इस क्लास में आना चाहिए था? क्या आपको जो है वो दूसरे लोगों को इस क्लास में लाना चाहिए था सिर्फ इसलिए कि हाँ भाई बड़ी अच्छी बातें करते हैं, इस वजह से जो चलो चलो हम क्लास लेते हैं इनकी, अच्छी बातें करते हैं इस वजह से क्लास लेते हैं? नहीं, अगर आप इस वजह से क्लास ले रही हैं ना, मेरा तो आपसे ये दरख्वास्त होगी छोड़ दें इस क्लास को, निकल जाएं इस क्लास से, ठीक है ना? क्योंकि ये तरीका नहीं है किसी की बात सुनना शुरू कर देने का, ये तरीका नहीं है, ठीक है ना? कल को आज आप मेरी क्लास ले रही हैं, कल को आप किसी और की क्लास लेंगे इसी वजह से। हाँ भी अच्छी बातें करते हैं, हाँ भी जो है वो अच्छी किताब पढ़ रहे हैं, चलो चलो उनकी क्लास लेना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये तरीका है ही नहीं किसी को सुनना शुरू कर देने का, ठीक है ना? इस क्लास में होने की आपके पास वजह होनी चाहिए, जेन्युइन वजह, सही वजह, बल्कि मैं तो कहूंगा या जो कहेगा सुन्नत वजह। सुन्नत वजह क्या है? सुन्नत वजह ये होनी चाहिए जो जो जरूरी है इस क्लास को लेने के लिए, वो ये है कि आप किसी ऐसे शख्स को जानती हैं कि जो के इस हादिस के बारे में जानता है, उसने आपको रेकमेंड किया है, सिर्फ बातें सुन करके नहीं बल्कि कुछ आगे पीछे तफसील जान करके उसने रेकमेंड किया है ना, तब ये सुन्नत तरीका है, क्योंकि यही तो तरीका है। सहाबा कराम इसी तरीके से तो नबी अलैहिस्सलाम को इंट्रोड्यूस कराते थे, और फिर नबी अलैहिस्सलाम, और हम तो जाहिर है ना, तो आप सहाबा हैं ना हम जो है वो नबूवत के किसी भी करीब करीब भी नहीं पहुंचने के काबिल हैं, ठीक है ना? और ना ही जो है वो आप सहाबियत के करीब करीब पहुंचने के काबिल हैं, ना हम जो है वो, लेकिन मॉडल तो वही है ना, नबी अलैहिस्सलाम की दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद जो सहाबा ने जिस तरीके से काम किया वो यही काम किया, वर्ड ऑफ माउथ के जरिए से, पर्सनल इंटरेक्शन के जरिए से, ठीक है? और फिर सहाबा के गुजर जाने के बाद ताबियीन ने ऐसे ही काम किया, ताबियीन के गुजर जाने के बाद दुनिया से तबा ताबियीन ने ऐसे ही काम किया, फिर हमारे उलमा और मशाइख ने हर दौर हर जमाने में ऐसे ही काम किया, राइट? मीडिया के जरिए से काम नहीं किया हमारे मशाइख ने, मीडिया के जरिए से हमारे मशाइख ने काम नहीं किया, हमारे मशाइख ने पर्सनल इंटरेक्शन से, जाती ताल्लुकात की बुनियाद पर काम किया है, और यही तरीका है दीन का काम करने का। तो जाती ताल्लुक होगा, पर्सनल इंटरेक्शन होगी, तब दीन का काम होगा, अगर नहीं होगा ना तो फिर वो दीन का काम नहीं होता, वो शरी शर होता है, ठीक है? इंटरनेट के ऊपर जो आप लोगों के लेक्चर सुनती हैं, ठीक है ना, दीन के लेक्चर सुनते हैं, इखलाकियात के लेक्चर सुनते हैं, ठीक है, लेकिन आप उस बंदे को के साथ आपकी कोई इंटरेक्शन नहीं होती, कहने वाले के साथ आपकी कोई इंटरेक्शन नहीं होती, ठीक है? तो ये आजिज आपके सामने एक क्लेम करता है, एक दावा करता है कि ऐसा दीन का जो लेक्चर आप सोशल मीडिया के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर सुन रहे होते हैं, उसका नुकसान ही नुकसान है, फायदा बहुत कम है, अगर है तो बहुत कम फायदा है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है, उसकी वजह क्या है ये आप बता दें अगर, ठीक है? जो आप इंटरनेट के ऊपर किसी किसी का भी लेक्चर सुनते हैं, मौलवी हो, मुफ्ती हो, शेख हो, या कोई मॉडर्न स्कॉलर हो, उसका जो आप लेक्चर सुनते हैं दीनी जिम्मेदारियों के बारे में, दीनी मसाइल के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन दीनी मसाइल से मुराद होती है कि भाई नमाज का तरीका क्या है, अगर आपको पता है कि हाँ भाई ये ऑथेंटिक आलिम है तो उनका जो है उनको सुनकर के आप नमाज का तरीका सीख सकते हैं, ठीक है ना? आप वजू का तरीका सीख सकते हैं, आप जो है वो हज का तरीका भी सीख, अगर आपको पता है कि यहाँ भी जानने वाले सही आलिम है तो उनको तो सुन करके आप तरीका तो सीख सकते हैं, ठीक है? मामलात भी सीख सकते हैं, तरीका भी सीख सकते हैं, यानी मामलात का भी तरीका सीख सकते हैं, इबादात का भी तरीका सीख सकते हैं, लेकिन जो ये नसीहतें होती हैं, खैर के बारे में नसीहत, शर से बचने की नसीहत, ठीक है ना, ये जब आप इंटरनेट के ऊपर किसी के मुंह से सुनते हैं ना, तो इसका नुकसान ज्यादा होता है, फायदा जो है वो बहुत कम होता है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारा उनसे कोई रब्ता नहीं, तो क्या वजह क्या है, यही तो पूछ रहे हैं कि रब्ता अगर नहीं है तो फिर नुकसान की वजह क्या है? वी कैन नॉट आस्क देम क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू अस, ठीक है? ये बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया, अगरचे कि ये बिल्कुल सही जवाब नहीं है कि हम उनसे अपने बारे में सवाल नहीं कर सकते हैं, अपने से रिलेटेड। वो हमारे कंफ्यूजन्स को दूर नहीं कर सकते, वो हमें नहीं सुन सकते। बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा जवाब दिया, उससे भी बेहतर जवाब दिया कि वो हमारी कंफ्यूजन्स को दूर नहीं कर सकते। ठीक है, ये वन वे ट्रैफिक है, बस वहां से हमारे पास आ रही है, हमारी तरफ से उनकी तरफ कुछ नहीं जा सकता, सवाल नहीं जा सकता उनके पास। ठीक है, उनसे कोई सवाल नहीं कर सकते फौरन अगर कोई बात समझ नहीं आए। ठीक है, अब और बताए ना रीजन, अगर कोई बात समझ उनसे कुछ पूछ नहीं सकते, ये तो हो गई ना, उन्हें हमारे प्रेजेंट सिचुएशन नहीं मालूम होता। नहीं, लेकिन ये नुकसान का सबब कैसे बनता है, ये सवाल तो ये है कि वो नुकसान का सबब कैसे बनता है, वो हमारे अहवाल नहीं जानते। भाई वो नहीं जानते, वो नहीं जानते, वो नहीं जानते, आप कुछ अपनी भी तो बात करें ना, तरबियत नहीं हो सकती। और बिकॉज दे कैन नॉट हेल्प अस टू इम्प्लीमेंट इट इन आवर लाइफ, दे आर अनअवेयर ऑफ आवर पर्सनल कंडीशंस। नुकसान का सबब क्यों बनता है, फायदे का सबब बहुत थोड़ा बनता है, अगर बनता है फायदे का सबब बहुत थोड़ा, नुकसान का सबब बनता है, इसका जवाब आप में से किसी ने भी नहीं दिया, इसका जवाब अभी तक किसी एक ने भी नहीं दिया। ठीक है ना, वो क्या, हम खुद से अपनी समझ से अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। चले, अब आप शुक्र है आ रही हैं इस तरफ, लेकिन बात अभी भी पूरी नहीं हुई। हम खुद अपना मसला हल करना शुरू कर देते हैं, तो आपका क्या ख्याल है, किसी और ने आके आपका मसला हल करना है, मसला तो खुद ही हल करना है भाई। ठीक है ना, किसी ने आपका मसला हल नहीं करना है, चाहे आपके अपने जाती शेख क्यों ना हो, अल्लाह ताला ने करना है। ठीक है, वो तो अल्लाह ताला की तौफीक एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन करना तो हम नहीं है, कोई दूसरा बंदा आके आपका मसला हल हरगिज हरगिज नहीं करेगा, वो कर ही नहीं सकता आपका मसला। अच्छा, हम उनकी बात सुन के अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं, तो अकल इस्तेमाल करने के लिए नहीं दी गई है, और किस लिए दी गई है ये अकल? अकल इस्तेमाल तो करनी जरूरी है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। हर किसी के इलाज का एक तरीका नहीं होता, फोकस नहीं हो पाते, वो हमें कोई गलत रविश भी सिखा सकते हैं। गलत रविश तो सिखाएंगे, अगर वो उलमाए सू में से हैं तो वो आपको गलत रविश सिखाएंगे, लेकिन मैं तो उलमाए हक की भी बात कर रहा हूँ ना, कि उलमाए हक हैं और बिल्कुल जो है वो नेक परहेजगार हैं और बड़ी अच्छी अच्छी जो है वो बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको नुकसान हो रहा है, वो क्यों? नुकसान की वजह जो है ना, वो अभी तक आप लोगों ने क्लियर नहीं बताई है, हालांकि ऊपर एक जवाब आया था, हम खुद से अपनी समझ से अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। जी भाई, पीछे क्या पढ़ा है हमने, चलें और भी कुछ लिखा है, व्हेन वी इंप्लीमेंट द एडवाइस ऑन आवर सेल्व्स और आवर फैमिली, दिस क्रिएट्स न्यू प्रॉब्लम्स एंड देन ऑल आर टेकन अवे फ्रॉम दीन। वाई, ये आपने जवाब सही दिया है, अब जवाब सही दिया, लेकिन वाई का जवाब अभी तक आपने नहीं दिया। कोई बात का कॉन्टेक्स्ट अलग होगा, हम अलग समझेंगे, राइट? व्हाई डज दैट हैपन? भाई देखें, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बुराई की सबसे पहली वजह क्या बताई थी, बुराई की सबसे पहली वजह जिसकी वजह से इंसान बुराई करता है, अखलाक जमीमा इख्तियार करता है, उसकी वजह क्या थी? नफ्स। एग्जैक्टली, इंसान का नफ्स। ठीक है, इंसान का नफ्स जो है ना, ये है असल बुराई की वजह। सही है, तो पहले भी तो कितनी दफा बात हो चुकी है कि जब इस नफ्स की इसलाह नहीं हुई होती है, ये नफ्स अमारा होता है, इसकी इसलाह नहीं हुई, अभी तक आपने इसको इसलाह करके नफ्स लवामा नहीं बनाया, नफ्स नफ्स मुतमईना तो बहुत दूर की बात है, नफ्स लवामा भी नहीं बनाया अभी तक आपने इसकी इसलाह करके, तो जब ये नसीहत की बात सुनेगा तो क्या ये अपने ऊपर अप्लाई करेगा उस नसीहत की बात को? हरगिज नहीं, ये अपने ऊपर तो अप्लाई नहीं करेगा, ये तो दूसरों के ऊपर वो गलत काम कर रहा है, शेख साहब ने जो बयान में फरमाया है ना, तो देखो देखो वो ये काम कर रही है, उसको ये काम नहीं करना चाहिए था, गलत करती है, अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, कि मैं ये गलत काम कर रही हूं, मुझे ये काम नहीं करना, सॉरी डिस्कस हो गया था। तो ऐसा शख्स जो है ना, जिसकी बिल्कुल कोई राबता ना हो, बिल्कुल कोई ताल्लुक ना हो नसीहत करने वाले के साथ, किसी भी दर्जे का ताल्लुक ना हो, तो वो फिर ना इस तरीके से सेलेक्टिव दीन, वो फिर दीन की बातें सुन करके जो है ना, वो बड़ा सेलेक्टिव उसकी अप्रोच होती है, और वो उसको अपने इस्लाह के लिए इस्तेमाल करने के बजाय दूसरों को पिन पॉइंट करना और दूसरों के ऊपर तनकीद करना और दूसरों से नफरत करना, दूसरों को बुरा समझना, उनकी गीबत करना, ये उसकी फिर वजूहात बन जाती हैं। तो दीन को सीखने का तरीका ये नहीं है कि किसी को भी उठ सुनकर सुनना शुरू कर दिया और फिर जो है वो उसी से जो है दीन हासिल करना है। इसके लिए एक ताल्लुक होना चाहिए, इसके लिए एक जो है वो रिलेशनशिप होनी चाहिए। ज्यादा बेशक शुरू में नहीं होती, लेकिन कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होनी चाहिए। आगे फरमाते हैं कि दूसरी बात यह है। अच्छा, फिर एक तो बात बहुत इंपॉर्टेंट बात ये लिखी थी कि जो वो दूसरा शख्स है ना, जिसके साथ जो है वो आपने दोस्ती बनाई है, ठीक है, यानी कुछ लोग होते हैं जो कि जिनके साथ इंसान की दोस्ती होती है, उसके बारे में फरमाया था कि वो अकलमंद हो, क्योंकि बेवकूफ आदमी से एक तो दोस्ती का निभा नहीं होता, दूसरे कभी ऐसा होता है कि वो तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहता है मगर बेवकूफी की वजह से उल्टा नुकसान कर गुजरता है। इसमें एक चीज पिछली क्लास में आजस रह गया था कहने से, ठीक है, वो ये है कि कुछ लोग जो है ना, वो इस्लाही ताल्लुक बना लेते हैं, ठीक है, और उसमें फिर अपने दीन के बारे में मशवरा करते हैं, जो उन्होंने किताबों से इल्म हासिल किया था या उन्होंने किसी और जरिए से इल्म हासिल किया है दीन का, तो अब अपने शेख जिनके साथ उन्होंने इस्लाही ताल्लुक बनाया है उनसे मशवरा करते हैं, ठीक है, कि भाई मुझे इस मामले में मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या चीज़ ज़्यादा मुनासिब है, ठीक है ना, क्या चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए, या इस तरह के मशवरे करते हैं, ठीक है। तो अब अगर ये साहब या ये साहिबा ये कोई बहुत ही बेवकूफ किस्म की खातून हो ना, तो ये जब देखती है ना कि उनको बड़ा फायदा हुआ मशवरे करने से, उनको बड़ा फायदा हुआ जो है वो सीख करके दीन पे अमल करने से फायदा हुआ, तो अब ये दूसरों को बताती हैं कि भाई आप भी आकर के मशवरे क्या करें, आप भी जो है वो दीन सीख करके उसके ऊपर अमल किया करें, ठीक है ना, पर्सनल लेवल के ऊपर ताल्लुक यानी मशवरा करके अमल क्या करें। तो अब ये बेचारी जो है ना, या बेचारे जो है ना, ये चूंकि थोड़ा सा उन ऊपर का ढीला वीला मामला होता है, ठीक है, तो अब ये ना लोगों को ये कहना शुरू कर देते हैं कि हर चीज पूछ के करनी होती है, हर चीज पूछ के करनी होती है, हर चीज के अंदर मशवरा करना होता है। भाई ये जो आप जुमला कह रही हैं, हर चीज पूछ के करनी होती है, हर चीज के अंदर मशवरा करना होता है, और साथ साथ ये भी कह रही है कि भाई सही ताल्लुक बनाना चाहिए, तो आपका क्या ख्याल है? ये जुमला सुनने के बाद कोई किसी का दिल चाहेगा सही ताल्लुक बनाने का? हाँ, या लोग जो है वो डर के मारे, खौफ के मारे जो है वो भाग जाएंगे उल्टा, क्योंकि ये है ना हर चीज के बारे में पूछना होता है, हर चीज के बारे में मशवरा करना होता है। भाई ये तो आप खुद नहीं करती, और ये कोई कर भी नहीं सकता, और ये करने की जरूरत भी नहीं होती, ये करने के लिए कहा भी नहीं जा रहा कि हर चीज पूछ करके चलो, हर चीज जो है उसके बारे में मशवरा करो। लेकिन इन साहिबा ने या इन साहिब ने अपनी बेवकूफी की वजह से ये जुमला जो है ना वो लोगों को कहना शुरू कर दिया, इससे वो लोगों को करीब नहीं ला रही, बल्कि वो मजीद दूर भगा रही है लोगों को, लेकिन अपने तौर पे अपने जोम के अंदर बड़ा अच्छा काम कर रही है, अपने जोम के अंदर जो है ना वो बड़ा दीन का बड़ा यानी अच्छा मशवरा दे रही है, ठीक है। तो ये बेहतरीन बल्कि बदतरीन मिसाल है इस बात की कि अकलमंद दोस्त से बेवकूफ दुश्मन, यानी बेवकूफ दोस्त से अकलमंद दुश्मन बेहतर है, ठीक है, क्योंकि ऐसे जो है ना वो बेवकूफी के अंदर जो दोस्त होते हैं ना वो उल्टा नुकसान पहुंचा जाते हैं, ठीक है। तो भाई जुमला जुबान से जो निकलता है ना उस, ये जो है ना एक हमारे यहाँ एक मुहावरा है, कहावत है, क्या है कि पहले तोलो फिर बोलो, पहले सोच लिया करो कि क्या जुमला बोल रहे हो, इस जुमले का क्या इम्पैक्ट होगा लोगों के ऊपर ना, और क्या उसकी हकीकत भी है कि नहीं, ये बोलने की जरूरत भी है इस किस्म का जुमला क्या नहीं। बात समझ में आ रही है? जो इस किस्म की गलती कर रही है तो वो इससे खुदा के वास्ते इज्तनाब करें, इस तरह की बातें मत लोगों को कहा करें, ठीक ठीक है, जिसमें जिस जिस जिसकी हकीकत ही कोई नहीं है, कि हर चीज के बारे में मशवरा करना होता है, गोया कि एक जो है ना ऊपर से डंडा ऊपर से जो है ना वो लटक जाता है बाप के ऊपर, अब आप जो है ना वो मशवरा करेंगी तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो ऊपर से एक डंडा पड़ेगा आकर के, ऐसा नहीं है यार। ठीक है, अच्छा आगे फरमाते हैं, ये दूसरी बात ये है कि उसके अखलाक और आदात दुरुस्त हों, अपने मतलब की दोस्ती ना रखे और गुस्से के वक्त आपे से बाहर ना हो जाए, जरा जरा सी बात में तोते की सी आंखें ना बदले। ठीक है, यानी जिससे आप दोस्ती बना रहे हैं ना, तो उसके अखलाक और आदात को जो है वो पहले आप देख लिया करें, मतलबी ना हो। ठीक है, गुस्से में आपे से बाहर हो जाने वाला ना हो और मूडी ना हो, बहुत ज्यादा जो मूडी किस्म के लोग होते हैं ना, छुई मुई जिनको कहा जाता है, ठीक है, टच मी नॉट भी कहा जाता है ऐसे लोगों को, कि बस कोई बात जो है ना वो उनके हिसाब से गलत हो गई। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वो बात गलत भी हो, पर उनके हिसाब से जो है ना वो बात गलत है, बस फौरन जो है ना वो नाराज, फौरन जो है ना वो यानी बहुत ही दिल उनका फट जाता है, फौरन से दिल पाश पाश हो जाता है उनका एकदम से। ठीक है ना, ऐसे शख्स से दोस्ती मत करना। ठीक है, ऐसे शख्स से दोस्ती मत किया करो जिसको अपने गुस्से के ऊपर काबू ना हो, जिसको अपने मूड के ऊपर, अपनी सेंसिटिविटी के ऊपर कोई काबू ना हो, ठीक है, और जिसके जो है ना वो दूसरे अखलाक भी जो है वो अगर बुरे हों, तो यानी ये तीन अलग अलग चीजें लिखी हैं, मतलबी शख्स से दोस्ती मत करना, गुस्से के वक्त आपे से बाहर हो जाने वाले से दोस्ती ना करना, और इंतहाई सेंसिटिव मूडी पर्सनालिटी जो होती है ना उससे दोस्ती मत करना। ठीक है, तो अब जो है ना जिनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं तो वो इस बात को समझ लें कि ये उनको इसकी इसलाह करने की जरूरत है। ठीक है ना, वरना डोंट एक्सपेक्ट कि लोग आपसे जो है ना वो दोस्तियां बनाएंगे, और अगर वो दोस्ती नहीं बना रहे तो अब आप उनसे मत नाराज नहीं हो कि वो दोस्ती आपसे क्यों नहीं बना रहे, बल्कि उसकी वजह समझें कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, इस वजह से कोई आपसे दोस्ती नहीं करता। ठीक है, तो अपने उस प्रॉब्लम की इसलाह की फिक्र करें, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ मांगें, और फिर अल्लाह ताला से यानी अल्लाह ताला से मदद मांगें, दुआ मांगें, और फिर जो है वो इस मसले को हल करने के लिए जो अल्लाह ताला ने तदबीरें और असबाब हमें हमारे मशायख के जरिए से सिखलाए हैं, तो उनके जरिए से अपनी इसलाह की फिक्र में लग जाएं। अच्छा, तो ये जो है ना वो दोस्ती के बारे में बातें बता रहे हैं कि हर आदमी दोस्ती के काबिल नहीं होता, जिसके अंदर पांच बातें हों उनसे उनसे राह और रसम रखने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो पहली बात उसमें से क्या थी कि वो अक्लमंद है, सही है। दूसरी बात क्या है, क्या है कि उसके अखलाक और आदात दुरुस्त हों। ठीक है, तो दुरुस्त के साथ साथ ये भी बता दिया कि बुरे अखलाक और आदात क्या होते हैं। अब तीसरी बात यह है कि दीनदार हो। ठीक है, क्योंकि बेदीन शख्स जब अल्लाह ताला का हक अदा नहीं करता तो तुम्हें इससे क्या उम्मीद है कि उससे वफा होगी। ठीक है, अच्छा ये जो है वो कोई हजरत ने जो है ना वो अपने मुशाहदे और अपने तजुर्बे और अपने इल्म की बुनियाद पर इन चीजों को एक के बाद एक लिख दिया है। ठीक है, तो इसमें जो है ना वो कोई ऑर्डर नहीं है कि सबसे अहम चीज ये है, फिर दूसरे नंबर पे अहम चीज ये है, फिर तीसरे नंबर पर अहम चीज ये है। ठीक है, क्योंकि दीन को जो है ना वो तीसरे नंबर पे हजरत ने यहाँ पे लिखा है, और अकलमंदी को और अखलाक और आदात को दूसरे पहले और दूसरे नंबर पे लिखा है। ठीक है, तो कोई ये ना समझे कि दीन जो है वो तीसरे नंबर पे देखने वाली चीज है, पहले नंबर पे जो है वो अकलमंदी देखनी चाहिए, दूसरे नंबर पे अखलाक और आदात देखनी चाहिए। ठीक है, तरतीब जो है ना वो यही है कि सबसे पहले दीन, सबसे पहले दीन, और हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को हम ये नहीं कहेंगे नाउज बिल्ला वो दीन को सबसे पहले अहमियत नहीं दे रहे, नहीं, वो हमसे ज्यादा दीन को समझते हैं, वो हमसे ज्यादा दीन की अहमियत को समझते हैं। तो अब इसकी क्या हम तावील करेंगे कि उन्होंने तीसरे नंबर पे क्यों लिखा है, भाई वो सिर्फ जो है वो सारी चीजों को यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रहे हैं, तरतीब को थोड़ी उन्होंने लिखी है। ठीक है, कि सबसे अहम चीज ये है, फिर दूसरे नंबर पे अहम चीज ये है, फिर तीसरे, ये को थोड़ी उन्होंने कहा है, वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई एक चीज ये है जिसका तुम्हें ख्याल रखना चाहिए, दूसरी चीज ये है जिसका तुम्हें ख्याल रखना चाहिए, तीसरी चीज ये है कि जिसका तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, भाई सबसे पहले दीन देखें, फिर उसके बाद जो है ना उस दीनदार शख्स में अकलमंदी देखें, और फिर उस दीनदार शख्स के अंदर क्या कहते हैं अखलाक व आदात भी देखें, या आप जो है वो अखलाक व आदात पहले देख लें, अकलमंदी दूसरे नंबर पे देख लें, ठीक है। लेकिन असल चीज तो इंसान की दीन ही होती है, और दीन को देखने की वजह हजरत ने कितनी बेहतरीन बयान फरमाई कि जब वो परवरदिगार का हक नहीं अदा करता, अपने रब के साथ वफा नहीं करता, वो तुम्हारे साथ क्या वफा करेगा, ठीक है ना। तो ये जो जुमला है ना, ये बड़ा अहम जुमला है, ये किसी और भी जगह पे बहुत ज्यादा हमें याद रखने की जरूरत है, ठीक है। कहाँ पर, वक्त कम है इस वजह से आज खुद ही बता देता है कि रिश्ता कर देते हैं, बेटे का रिश्ता या बेटी का रिश्ता किसी ऐसे शख्स से कि जिसके अंदर दीन नहीं होता, ठीक है, जो अल्लाह ताला के हुकूक अदा नहीं कर रही होती, अल्लाह ताला की जो है वो यानी जो फराइज हैं उसके ऊपर उनकी पाबंदी नहीं कर रही होती, लड़की या लड़का पाबंदी नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो अब इनको करनी होती है शादी, अपने बच्चे की उसके साथ शादी करनी होती है, ठीक है, और हैं भी दीनदार, तो बच्चा दीनदार है, अपना बच्चा जो है वो दीनदार है, या अपनी बच्ची जो है वो दीनदार है, लेकिन जहां पे रिश्ता लग रहा है वो दीनदार नहीं है, तो क्या जवाब देती हैं? कोई अगर कहे ना कि भाई ये तो यहाँ पे तो दीन ही नहीं है, यहाँ पे तो पर्दा ही नहीं है, यहाँ पे तो नमाज की पाबंदी में नहीं है, यहाँ पे तो यानी अजीब काफिरों वाला जो है वो तौर तरीका चल रहा है इस घराने के अंदर, तो आप अपने बच्चे की शादी ऐसे घराने में ऐसे बच्चे से या ऐसी बच्ची से कैसे कर सकते हैं? तो आगे से जवाब क्या मिलता है कि अभी नहीं है लेकिन बाद में हो जाएगा, शादी करने के बाद दीनदार हो जाएगा, शादी करने के बाद वो लड़की जो है वो दीनदार हो जाएगी, पर्दा करना शुरू हो जाएगी, अभी पर्दा नहीं करती कोई बात नहीं, शादी के बाद पर्दा करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो भाई ये किस किस्म की लॉजिक है कि अभी नहीं है शादी के बाद पर्दा करना शुरू हो जाएगी, ठीक। तो भाई वो अल्लाह की वफादार नहीं बन सकी, तो आपकी यानी अल्लाह की वजह से तो उसने काम किया नहीं, अल्लाह के रसूल की वजह से तो उसने काम किया नहीं, ठीक है, लेकिन आपको इतनी अहम चीज है कि आपकी वजह से वो सब कुछ करना शुरू कर देगी, जब आपके घर में आएगी तब जो है ना वो नमाज भी पढ़ना शुरू कर दी, तब जो है वो पर्दा भी करना शुरू कर देगी, पता नहीं कहाँ की ये लॉजिक लेकर के आते हैं। असल में जो है ना हमें कोई काम करना होता है जो कि गलत काम होता है, अब हम उसकी कोई ना कोई तावील बनाते हैं, कोई ना कोई ना वो लेजिटिमेसी जो है ना वो उसको देने की कोशिश करते हैं, तो वो इसी किस्म की फिर फजूल की जो है ना वो रीजंस देते हैं फिर उसके ऊपर, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, क्यों ठीक हो जाएगा भाई शादी के बाद सब कुछ, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है वो यानी 100% जो दीनदार हो बस उसी से शादी करें, और बस थोड़ा सा कमी बेशी देखें तो बस उसके बाद रिश्ता नहीं करें, ये भी इसका मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन भाई कुछ तो देखो ना यार, ठीक है, दीन को आप ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही किसी मॉड स्क्वाड को या बिल्कुल ही बेपर्दा किसी को उठा करके आपने जो है वो, भाई अगर उसके अंदर कुछ आप ऐसे असरात देखते हैं, ठीक है पूरा पर्दा नहीं करती, बेहतरीन तो ये है कि पूरा पर्दा करने वाली बच्ची हो, ठीक है ना, दुनिया के जो खराफात हैं उनसे महफूज माहौल से आई हुई बच्ची हो, बेहतरीन तो ये है। लेकिन अब अगर नहीं मिल रही, बच्चे की शादी तो करनी है, ठीक है ना, ऐसी बच्ची नहीं मिल रही, तो भाई कम से कम ऐसी तो हो ना कि जिसके अंदर कुछ आपको असरात नजर आ रहे हो, कुछ उसके अंदर जो है वो नरमी नजर आ रही हो, कुछ उसके अंदर जो है वो इस तरफ मायल होने की इस्तेदाद नजर आ रही हो, ठीक है, तो वो देख करके फिर चले ये उम्मीद बनती है कि हाँ भाई अभी इतना नहीं है लेकिन शादी के बाद जो है वो बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि हमारे माहौल में आएगी, पहले जो है वो बिल्कुल ही अच्छे माहौल में नहीं थी, अब हमारे माहौल में आएगी, हम जो है वो उसको दे करके चलेंगे और दुरूस का हिस्सा भी बनाएंगे, इल्म वगैरह की बातें भी करेंगे, समझाएंगे, ठीक है ना, और उसको सपोर्ट करेंगे दीन के अंदर, तो कर लेगी, ये बात फिर इसके सेंस बनता है। लेकिन हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही जो है ना वो ये होता है कि बस शादी से पहले कुछ भी नहीं है, शादी के बाद एकदम से एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ हो जाएगा। क्या लिखा आपने, हम ये भी सोच रख सकते हैं कि दीनदार बच्ची इस घर में जाकर सब बदल भी सकती है, दीनदार बच्ची उस घर में जाकर सब बदल भी सकती है, यानी घर में तो कोई दीन भी नहीं है लेकिन दीनदार बच्ची लेकर के आ जाओ, ठीक है, अब वो दीनदार बच्ची आकर के इस घर को बदल देगी। नहीं, कोई इतना आसान नहीं है ये काम, किसी घर को बदल देना। ठीक है, यानी देखें लेवल ऑफ डिफिकल्टी, समझते हैं ना, यानी कितना मुश्किल काम है, इसका बड़ा अहम रोल होता है। कितना, यानी कोई काम जो करने का आप किसी को दे रहे हैं या किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ये काम कर लेगा या वो ये काम कर लेगी, तो उसमें ये देखना होता है कि भाई कितनी मुश्किल है। अगर बहुत ज्यादा मुश्किल है ना, तो फिर अल्लाह ताला ने ये नहीं सिखाया हमें कि इंतहाई मुश्किल काम के अंदर किसी शख्स को डाल दो और ये समझो कि हाँ भी वो कर लेगा। नहीं, उसकी इस्तेदाद को देखो, उसकी अपनी, यानी उसकी अपनी कितनी बेस है, कितना उसका जो है वो मजबूती है इसके अंदर, ठीक है ना। और फिर काम को भी देखो कि काम उसके हिसाब से बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। इन दोनों चीजों को देखो, ठीक है, अगर ये दोनों करीब करीब नजर आती हैं फिर तो कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा फर्क है ना कि इसकी इस्तेदाद बहुत कम है, इसकी अपनी जो है वो यानी सलाहियत और इसकी अपनी जो 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 इसको कहते हैं कि तरबियत और तालीम कम है और आगे बहुत मुश्किल सूरत हाल है, तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लो, इतना बड़ा रिस्क नहीं लो, ठीक है ना। इसकी एक बहुत बहुत ही आसान सी सादा सी मिसाल है, ठीक है, वो क्या है कि तैरना, स्विमिंग, ठीक है ना। अगरचे कि आप में से किसी को शायद स्विमिंग आती हो, ज्यादातर को नहीं आती होगी, ठीक है, लेकिन ये मिसाल ऐसी है कि जिसको कि आप समझ सकती हैं, चाहे आपको खुद कभी जिंदगी में स्विमिंग ना करी हो, लेकिन मिसाल आसान है। वो क्या कि भाई स्विमिंग जिसको थोड़ी आती है, ठीक है, थोड़ा तैरना आता है, तो उसको आप जो है वो अगर किसी स्विमिंग पूल के अंदर डालें तो उसके अंदर वो कर लेगा, किसी ना किसी तरीके से अपने आप को बचा लेगा और शायद किसी और को भी थोड़ा सा बचा ले डूबने से, क्योंकि स्विमिंग पूल में तो डूबना मुमकिन है ना, लेकिन जिसको थोड़ी बहुत स्विमिंग आती हो तो वो स्विमिंग पूल के अंदर बच जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या ऐसे शख्स को आप किसी समंदर के अंदर डालना पसंद करेंगी कि भाई ये स्विमिंग तो उसको थोड़ी बहुत आती है ना, तो चलो अब इसको समंदर में फेंक देते हैं, वहां पर भी खुद से भी खुद बच जाएगा और शायद किसी और को भी बचा ले। नहीं, समंदर के जो पानी होता है उसके एक अलग लहरें होती हैं, उसके अंदर वेव्स होती हैं, और अभी जो अगर आपने बयान सुना हो फ्राइडे वाला है, तो उसके अंदर वेव्स भी होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, और उसके अंदर जो है वो करंट्स भी होते हैं, है ना, मिलियंस ऑफ क्यूबिक, क्या कहते हैं, लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो एक एक सेकंड के अंदर वहां पे चल रहा होता है समंदर के अंदर, या कोई बहुत बड़ा दरिया हो। तो भाई जिसको स्विमिंग बहुत चैंपियन नहीं है स्विमिंग का, उसको आप समंदर के अंदर डाल करके ये नहीं एक्सपेक्ट करती हैं कि अच्छा अब इसके ऊपर कोई नहीं, बचाने वाला तो अल्लाह है, तो बचाने वाला अल्लाह है, तो आप अपने बच्चों को जिसको अच्छी स्विमिंग नहीं आती के अंदर आप फेंक करके दिखाएं समंदर के अंदर, क्योंकि भाई बचाने वाला तो अल्लाह है, वो तो आपके बच्चे को भी बचाने वाला है, लेकिन क्या आप अपने बच्चे को जो है वो समंदर में फेंकेंगी, नहीं फेंकेंगे ना। अपने बच्चे के बारे में तो ये स्टैंडर्ड है कि नहीं, अल्लाह है बचाने वाला, लेकिन मेरा भी, मुझे भी अल्लाह ताला ने कुछ जिम्मेदारी दी है ना। उसी तरीके से ये किसी बच्ची को उठा करके किसी ऐसे घराने के अंदर ले आना कि जो कि यानी इंतहाई मुश्किल घराना है, तो उससे फिर ये एक्सपेक्ट करना कि वो आकर ये घराने को चेंज कर देगी, ये ऐसे ही है कि जैसे आपने किसी ऐसे बंदे को उठा करके जो है ना वो समंदर के अंदर फेंक दियो, ठीक है ना। बड़े बड़े मशायख जो होते हैं ना, अल्लाह वाले वली, वो नहीं चेंज कर पाते हैं ऐसे घरानों को, है ना, एक आध कोई मुश्किल से उनकी बात सुनता है, बाकी कोई नहीं सुनता। तो ये एक बच्ची जो है वो जिसने जो कि पर्दा कर लेती है, जो नमाज वमाज पढ़ लेती है, जिसने जो है वो आलमा कोर्स कर लिया, ये क्या करेगी वहां पे जा करके, ठीक है। तो उसके लिए भी वही स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल करें जो कि अपने बच्चे के लिए स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिस तरह अपने बच्चों को समुंदर में नहीं धक्का दे देते ना, उसी तरह किसी दूसरे के बच्चे को भी समुंदर में धक्का नहीं देना चाहिए, ठीक है जी। लड़के वाले दीनदार लड़की यही सोच के लाते हैं, अपने बच्चे को तो वो दीनदार बना नहीं सके, है ना, तो जो काम खुद नहीं कर सके ना, वो समझते हैं कि जी वो बीवी आकर के कर देगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। या तो वो हो कोई चैंपियन, इतनी यानी ईमान और यकीन में इतना आगे हो कि जैसे कि कोई स्विमिंग चैंपियन हो, ठीक है ना। तो स्विमिंग चैंपियंस जो होते हैं ना, वो फिर समंदर में भी स्विमिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी जो है ना, वो फिर आएगी तो शायद अपने शौहर को इस तरफ माइल कुछ कर ले, लेकिन अदरवाइज नहीं होता इस तरीके से। और दूसरी बात यह है कि ऐसी लड़की फिर आपके ऐसे लड़के से शादी करेगी क्यों, कि जो कि बिल्कुल भी बिगड़ा हुआ है ना, जो दीन के बारे में बिल्कुल भी, या तो बिल्कुल भी दीन पे अमल नहीं करने वाला है, या जो है वो किसी गलत दीन के का शिकार हुआ है, ठीक है ना। वो फिर बच्ची नहीं आकर ये सारे काम करते। आप खुद करें ना, आप क्यों नहीं कर, आपको इतनी फिक्र है अम्मा हुजूर, राइट, कि कोई बच्ची आ जाए जो मेरे बच्चों को बचा ले, दीन पे ले आए। तो आप किस मर्ज की दवाएं, पहले तो ये बताएं। आप तो वालिदा है ना, आप तो अम्मा है ना, वो तो बीवी बनेगी जब वो आएगी, तो किसका किसका मर्तबा ज्यादा होता है, किसका असर जो है वो बच्चों के ऊपर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो आप पहले करें ना कुछ काम उसके ऊपर, फिर उसको बीवी के जिम्मे पर बाद में कीजिएगा, ठीक है। तो तीसरी बात यह है कि दीनदार हो, क्योंकि बेदीन शख्स जब अल्लाह ताला का हक अदा नहीं करता तो तुम्हें इससे क्या उम्मीद है कि इससे वफा होगी, यानी वो तुम्हारे साथ क्या वफा करेगा। दूसरी खराबी यह है कि जब तुम बार बार उसको गुनाह करते देखोगे, देखें ये बात भी याद रखें, हजरत थानवी रहमतुल्लाह को ऐसे ही हकीम उलुम्मत नहीं कह दिया गया है, वाकई इसकी 100% जस्टिफाइड है उनको हकीम उलुम्मत कहना, ठीक है ना। इतना बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट, इतना बेहतरीन जो है ना वो, यानी इंसानों की नफसियात को समझने वाला, या जिस, तो पहले भी कह चुका है, पिछली सदी में आपको कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हजरत फरमाते हैं कि दूसरी खराबी यह है कि जब तुम बार बार उसको गुनाह करते देखोगे और दोस्ती की वजह से नरमी करोगे, तो खुद तुम्हें भी उस गुनाह से नफरत नहीं रहेगी, ठीक है। यानी बच्ची को लेकर के आए थे घर को संवारने के लिए, पता चला बच्ची साहिबा खुद ही गई, ठीक है, क्योंकि वो मुस्तकिल जो है वो गुनाह के माहौल के अंदर जो रह रही हैं, और गुनाह के माहौल में रहने का मतलब खाली ये नहीं होता कि बस जो है वो उस घराने के अंदर नेकी नहीं की जा रही और पर्दा नहीं किया जा रहा, बल्कि गुनाह का माहौल असर डालता है उसके ऊपर। लोग रोकते भी तो है ना कि भाई हमारे यहाँ पर्दा नहीं होता। ये कितने हम ऐसे लोगों को जानते हैं, कितने ऐसे लोगों के बारे में लोगों ने बताया या हमने देखा कि बजाहिर बहुत दीनदार लगते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी और सफेद सफेद जुब्बे और इमामे और सारी चीजें, लेकिन जब शादी करके किसी बच्ची को लेकर के आ रहे होते हैं ना, तो पहले से बता देते हैं जी पर्दा नहीं होता हमारे यहाँ, बाकी सब कुछ हो जाएगा, पर्दा नहीं होता हमारे यहाँ, हम पर्दा नहीं करवाएंगे इसको, ठीक है ना, हम पर्दा नहीं करवाएंगे। अल्लाह के बंदे, तुम पर्दा नहीं करवाओगे तो फिर कौन पर्दा करवाएगा, तुम तो दीन के ठेकेदार हो, और तुम कहते हो कि जी हम पर्दा नहीं, हमारे घर में पर्दा नहीं होता। यानी बस वही मसला, सारा का सारा मुसीबत शैतान ने जो कि डाली हुई है दिलों के अंदर, कि अगर अल्लाह का हुक्म मान लेंगे ना तो घर टूट जाएगा, अल्लाह का हुक्म मान लेंगे ना तो मोहब्बतें खत्म हो जाएंगी, राइट, अल्लाह का हुक्म मान लेंगे तो मोहब्बत खत्म हो जाएगी, घर में नफरतें पैदा हो जाएंगी। पर्दा क्या है, बोल दो कि अल्लाह का हुक्म नहीं है, नकले कुफर कुफर नपाशत, इसका मतलब है कि कुफर, या इंसान कोई जुमला बोले लेकिन मकसद कुफर करना नहीं है बल्कि मकसद समझाना है, इस वजह से आजिज़ी बात कर रहा है, ठीक है। क्या पर्दा अल्लाह का हुक्म नहीं है, ठीक है ना। खुद जो है ना दूसरों को नसीहतें करते हो कि पर्दा करो पर्दा करो पर्दा करो, राइट। सूरह अहज़ाब के अंदर पर्दे का हुक्म आया, और सूरह नूर के अंदर पर्दे का हुक्म आया, और फिर मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने बताया कि पर्दा ऐसे होता है, पर्दा ऐसे होता है, पर्दा ऐसे, सारी दुनिया को नसीहत कर रहे हैं, और अपने घर के अंदर नहीं जी हमारे घर में पर्दा नहीं होता। क्यों नहीं पर्दा होता भाई आपके घर में, क्योंकि जो है ना वो देवर जेठ और ये जो 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 खानदानी रिश्तेदारियां हैं ना, तो ये खराब हो जाएंगी, लोग माइंड कर जाएंगे, लोग नाराज हो जाएंगे, इस वजह से हमारे यहाँ पर्दा नहीं होता, ठीक है। और जो अम्माएं होती हैं वो कि नहीं जी वो दूरियां हो जाएंगी, दूरियां, इसलिए जो है ना वो हमारे घर में पर्दा नहीं होता। हम नहीं करवा सकते पर्दा, क्योंकि दूरियां हो जाएंगी। ठीक है ना, कयामत के दिन ही अल्लाह ताला को क्या हिसाब देगी, जब अल्लाह ताला उसे पूछेंगे तो कि जब तुम्हारे बेटे को जॉब की ऑफर आई थी किसी दूसरे शहर से या किसी दूसरे मुल्क से, उस वक्त तुम्हें दूरियों की फिक्र नहीं पड़ी थी, उस वक्त तुमने बड़ी खुशी के साथ बल्कि दुआएं मांग मांग करके अपने बेटे को जो है ना वो दूसरे शहर भेजा था, उस वक्त की दूरियां किधर चली गई? वो क्यों नहीं, उससे क्यों नहीं दूरी आई तुम्हारे घर के अंदर? दूरी आई तो मेरे हुक्म की वजह से, मेरे हुक्म की वजह से तुम्हारे घर के अंदर बस दूरी आनी थी, भाइयों के दरमियान दूरी आनी थी, नहीं? चार पैसे के जॉब की खातिर जो है वो दूरी नहीं आई तुम्हारे घर के अंदर, जिसकी वजह से तुमने अपने घर बच्चों को सऊदी अरब भेज दिया और मिडिल ईस्ट भेज दिया और अमेरिका भेज दिया और ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। मुझे बताएं ना जरा क्या जवाब देंगे इसका, क्या जवाब देंगे इसका? या कह दें कि नहीं कोई सवाल जवाब कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होता है, नहीं? अल्लाह ताला ने को थोड़ी कुछ पूछना है मरने के बाद हमसे। फिर सोचें कि फिर आपका दीन है क्या, ये फिर सोचें कि आपने किस तमाशे को जो है वो दीन का नाम दिया हुआ है, ये बताएं मुझे किस तमाशे को आपने दीन का नाम दिया हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है आपने? अभी एक अंग्रेजी का लफ्ज लिख करके ना पूरा जुमला टूट जाता है, असल में पढ़ा नहीं जा रहा, कहाँ से शुरू करूं? दुनियादारों के अंदर फंसना कोई आसान काम नहीं, मैं अभी अम्मी अब्बू के घर में ही हूं पर इतनी मुश्किल होती है, हालांकि ब्लड रिलेशनशिप होती है, ससुराल वालों के साथ तो ऐसा रिश्ता ही नहीं होता जी। ठीक है, यानी जब आप अपने सगे वालिदैन के घर में होती हैं ना, लेकिन वो दीन पे अमल नहीं करना चाहते और आप दीन पे अमल करना चाहती हैं, तो आपके सगे आपके खिलाफ हो जाते हैं, सगे खिलाफ हो जाते हैं, वो रुकावट डालते हैं दीन पे अमल करने में। तो जब ससुराली रिश्तेदार में जाएंगे और वो दीन के ऊपर अमल करने में आपके साथ नहीं होंगे तो कितनी ज्यादा मुश्किल होगी, तस्वर करें जरा। ठीक है, अगर किसी को बद्दुआ देनी हो तो कहना कि दुनियादारों के अंदर फंसे आप, लगता है बहुत ज्यादा ही फंसी हुई है, दुआ करें अल्लाह ताला से और मदद मांगे, बहुत ज्यादा दिल दिल के गहराई से अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला के लिए हिदायत दे देना भी मुश्किल काम नहीं है, हमारे लिए तो सब कुछ ही मुश्किल है, अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। खैर, अच्छा किसी और ने लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो समझ आ गई लेकिन घर वालों को समझाने से मजबूर है। नहीं, आपका ये भी एक जिम्मेदारी है, आपको समझ में आ गई बात अल्हम्दुलिल्लाह के पर्दा करना है, अल्लाह के हुक्मों के ऊपर अमल करना है, ठीक है ना? अब दूसरों को समझाना से मजबूर है, नहीं दूसरों को समझाने से मजबूर नहीं है, आपको समझाना सीखना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है कि समझाना सीखें कैसे समझाया जाता है, ठीक है ना? इससे क्या होगा, इससे आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, अगरचे के तौफीक तो अल्लाह ने देनी है, ठीक है ना? तौफीक आपको भी अल्लाह ने ही दिया बाय द वे, राइट? क्या ख्याल है, आपको तौफीक किसी और ने दी है? ठीक है ना, आपको जो समझ आ गया है ये कैसे आ गया आपको, राइट? खुद से तो नहीं आपको समझ में आ सकता, खुद से तो नहीं आप जो है वो दीन के ऊपर अमल कर सकती हैं या दीन की बात को समझ सकती हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हम, अल्लाह ने हमें तौफीक अता फरमाई, अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसान बनाया तब हमारे समझ में आ गया। तो आपका अल्लाह है उनका अल्लाह नहीं है, आपके घर वालों का अल्लाह नहीं है, वो अल्लाह के बंदे नहीं है, अल्लाह के लिए उनको समझाना मुश्किल काम है, आपको समझाना आसान काम था, इस वजह से चलो अल्लाह ने आपको समझा दिया, उनको नहीं समझा सकता, नहीं, अल्लाह के लिए उनको भी समझा देना इतना ही आसान है जितना कि आपको समझा देना था, ठीक है ना? अपना काम करें, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम का जो काम है ना उसको सीखें, दावत कैसे दी जाती है, तबलीग कैसे की जाती है, ये आपका करने का काम है, ठीक है ना? और फिर नतायज को अल्लाह ताला के हवाले करें, अल्लाह ताला करेंगे, अल्लाह ताला मदद करेंगे, ठीक है? ठीक है, 100% लोग नहीं बात मानेंगे, लेकिन अगर 30% भी आपकी बात मान जाएंगे ना तो भी समझ लें कि कितनी ज्यादा आसानी हो जाएगी आपके लिए, काम तो करें ना अपना, ठीक है? यानी दीन की समझ को उस लेवल तक लेकर के जाएं, सिर्फ इस लेवल तक नहीं रखें कि बस मुझे समझ में आ गई मैंने अमल करना शुरू कर दिया, नहीं, दीन की समझ को उस दर्जे तक पहुंचाएं कि आप दूसरे बंदे को भी समझा सकें, लाजिमी है ये हमारे लिए कि हम दूसरे बंदे को समझाने की अंडरस्टैंडिंग तक पैदा करें, ठीक है ना? बैठ ना जाए कि मेरे तो समझ में आ गया, मैंने तो बात करनी शुरू कर दी, नहीं, इस पे बैठ नहीं जाए, ठीक है? अगर मियाँ नहीं मानते पर्दा करवाना अपने भाइयों से तो भी गुना होगा औरत को। अगर मियाँ नहीं मानते, गुना इसलिए होगा कि आपने सीखा क्यों नहीं कि मियाँ को कैसे मनवाना है और इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, कैसे पर्दा करना है। ठीक है ना, ये सीखना आपके ऊपर फर्ज है। देखिए, पर्दा फर्ज है, पर्दा हर औरत के ऊपर फर्ज है जो कि बालिग है। ठीक है, तो फर्ज जो है वो सीखना नहीं होता। ये बात कुछ लोग आप में से बहुत पहले भी सुन चुके हैं इस बात को। भाई नमाज फर्ज है ना, क्या आपने सीखे बगैर नमाज पढ़नी शुरू कर दी? हाँ भाई, आपने कहीं सुन लिया था नमाज फर्ज है, नमाज फर्ज है, चलो जी अब जो है ना वो आप पांचों नमाजें पढ़ना शुरू हो गई। भाई थोड़ा सा थोड़ा सा अपनी अकल को इस्तेमाल करें, थोड़ा सा इसके ऊपर सोचें, क्या बगैर सीखे आप नमाज पढ़ना शुरू हो गई क्योंकि वो फर्ज थी? भाई भाई सीखा ना, वुजू कैसे करते हैं, वुजू के अंदर जो है वो ऐसे शुरू करते हैं, ऐसे खत्म करते हैं, बीच में ये सब कुछ करना पड़ता है, वुजू तक आपको सीखना पड़ा था। बगैर सीखे तो आप वुजू नहीं कर सकती थी। हाँ, बचपन में अगर सिखा दिया तो उसको ये मतलब कोई थोड़ी है, अगर बगैर सीखे आपने वुजू सीख ली, वुजू करना शुरू कर दिया, सीख के वुजू करना शुरू किया। कुछ लोगों ने बड़े होने के बाद वुजू करना सीखा। नमाज पढ़ना, कितनी नमाजें होती हैं, कितनी रिकात होती हैं, फर्ज क्या होती है, सुन्नत क्या होती है, नफिल क्या होती है, किबला क्या होता है, कपड़े कैसे पाक होने चाहिए, जगह कैसी पाक होनी चाहिए, क्या पढ़ना है इसके अंदर, क्या तिलावत करनी है, किस वक्त तिलावत करना फर्ज है, किस वक्त तिलावत करना नहीं तिलावत करना है, जमात में खड़े हुए तो तिलावत नहीं करनी है, वगैरह वगैरह, कितनी सारी तफसील है नमाज के अंदर। तो सिर्फ ये मालूम हो जाना कि नमाज फर्ज है, क्या ये काफी था? तरीका सीखा ना, राइट? ओ भाई पर्दा भी तो फर्ज है, बगैर सीखे पर्दा, बस वो पर्दा कर रही थी, उसको देखा पर्दा करना शुरू कर दिया। ये नमाज इसी तरह से आपने सीखी है, लोगों को देख देख करके नमाज पढ़नी शुरू कर दी कि वो ऐसे पढ़ रही थी तो नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप किसी को देख करके नमाज पढ़ना शुरू कर सकें। नमाज में क्या पढ़ना किया है, किस वक्त क्या पढ़ना है, किस वक्त क्या नहीं पढ़ना, ये किसी को देख करके आपको समझ में आ जाएगा? पर्दा भी ऐसे ही है, पर्दा भी ऐसे ही है, सिर्फ काला कपड़ा ऊपर डाल लेना ये पर्दा नहीं है कि भाई फलानी औरत जो है ना वो उसने काला कपड़ा अपने ऊपर डाला हुआ था तो मैं समझी कि यही पर्दा था तो मैंने भी ये करना शुरू कर दिया। और अगर मैं काला कपड़ा जो है वो अब इसका नतीजा क्या निकलेगा कि जब जो है वो काला कपड़ा अपने ऊपर नहीं डाल पाती तो अब समझ नहीं है कि जी अब मैं पर्दा अब तो उसके पर्दा ही नहीं हो सकता। शौहर ने मना कर दिया जी काला कपड़ा तुमने अपने ऊपर नहीं डालना, तो अब तो इसका मतलब है कि पर्दा ही नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि पर्दा सीख करके करना है, बगैर सीखे आप पर्दा नहीं कर सकती। तो आपको गुनाह मिलेगा, किस बात का गुनाह मिलेगा? ना सीखने का गुनाह मिलेगा, इसके ऊपर गुनाह मिलेगा कि क्यों नहीं सीखा था। ठीक है, तो अब आपके लिए एक टास्क आ गया है कि जी आपने सीखना है पहला पर्दा। ठीक है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, शौहर के साथ कैसे मामला करना है कि वो पर्दे के रास्ते में रुकावट बनना ही छोड़ दें। ठीक है, ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको। चलो यहाँ पर हम इस वाली क्लास को रोकते हैं, अगली क्लास शुरू करने से पहले थोड़ी सी ब्रेक ले करके फिर उसके बाद हमें सारी औरतें क्लास शुरू करते हैं। आखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।